ओम शांति। एक बार फिर से बोलेंगे सभी, ओम शांति। किसी भी मनुष्य के जीवन में चार भाग्य कहे गए हैं, तन मन धन और जन। तन का भाग्य कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, तन स्वस्थ होना चाहिए। दूसरा मन का, ये मन सदा प्रसन्न हो, जो कहा एवर हैप्पी रहें। और यदि हम हर परिस्थिति में खुश रह पाते हैं अपने जीवन में, तो ये भी बड़ा भाग्य है। धन का भाग्य है कि इतना धन इंसान के पास जरूर हो कि वो अपनी आवश्यकताओं को सहज पूरा कर सके। किसी भी आवश्यकता के लिए संघर्ष न करना पड़े। और जन का भाग्य कहेंगे कि जो भी हमारे संबंधी हैं, संपर्क में हैं, वो सब निस्वार्थ स्नेह और सहयोग देने वाले हों। यानी सुख देना, सुख लेना, और संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। तो हमें संगम युग पर बाबा ये चारों ही भाग्य प्राप्त करवाते हैं, या प्राप्त करने की विधि हमें देते हैं। तो हमें ये सब भाग्य मिले हैं या नहीं मिले हैं, क्या कहेंगे, मिले हैं? तो जब हम तन का भाग्य कहते हैं निरोगी काया, तो सदा शरीर से स्वस्थ रहना, एवर हेल्दी रहना, संगम युग में शायद संभव नहीं है। रहते भी हैं, ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे होते हैं, कोई कोई हमेशा स्वस्थ रहते हैं, तन से भी स्वस्थ रहते हैं, लेकिन बहुत कम। लेकिन ज्यादातर हमें हिसाब किताब तन का चुकतू करना होता है। पर आने वाले 21 जन्म तो बाबा की गारंटी है कि हम एवर हेल्दी रहेंगे, लंबी आयु होगी, 150 वर्ष की आयु होगी, 125 वर्ष की आयु होगी त्रेता युग में। और देवताएं कभी बीमार नहीं होते हैं, इसलिए वहां ना डॉक्टर होते हैं ना हॉस्पिटल होते हैं, वहां हमें कोई दवाइयों की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ ये जो एक अंतिम जन्म है हमारा, इसमें जो थोड़े बहुत हिसाब किताब हमें चुकतू करने होते हैं, चाहे वो तन के माध्यम से, चाहे वो मन के माध्यम से, चाहे वो धन के माध्यम से, चाहे वो संबंधों के द्वारा, इन चार तरह से ही हमारे हिसाब किताब भी खत्म होने हैं। क्योंकि हरेक को हिसाब किताब चुकतू करके पावन बनकर वापस घर जाना है। आज की मुरली में भी था ना, बाबा ने क्या कहा, चाहो न चाहो, मार से भी कहां जाना है। तो वो हिसाब किताब हम खुशी खुशी चुकतू कर लेते हैं या दुखी होकर चुकतू करते हैं, ये तो फिर हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो जो तन की बीमारी आती है, छोटी मोटी बीमारी की तो कोई बात नहीं है, उसकी कोई चिंता नहीं होती है। और आज बाबा के अवतरण के बाद मेडिकल साइंस, विज्ञान ने इतनी प्रगति की है कि किसी भी क्षेत्र में मनुष्य को कोई कमी है नहीं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी आज एक से एक दवाइयां हैं, एक से एक साधन है, जिनके द्वारा बीमारियों का निदान भी होता है और सहज इलाज भी हो जाता है। और सिर्फ एक पद्धति नहीं है, कितनी पद्धतियां आज चिकित्सा की हैं। तो जो हमें सूट करती है हम वो इलाज ले लें। बाबा हमें कभी भी मुरली में ये नहीं कहते कि आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है, केवल बाबा की याद से ही आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। योग जरूर हमें मदद करता है, योग हमारे कर्म भोग को कर्म योग में बदलकर बीमारी को सूली से कांटा अनुभव करने में मदद करता है। ये योग की शक्ति है कि यदि मेरा मन स्वस्थ है, यदि मेरी आत्मा स्वस्थ है, यदि मन शक्तिशाली है, तो फिर भले ही बड़ी बीमारी भी होगी तो भी उसका दर्द या तकलीफ मुझे अनुभव कम से कम होगी। सूली से कांटा होने का मतलब क्या है? है तकलीफ बहुत बड़ी, लेकिन मुझे कितनी अनुभव हो रही है? बहुत कम। दर्द होगा लेकिन उसकी महसूसता नहीं होगी। तो ये जो मन से स्वस्थ आत्माएं हैं उनके लिए होता है, लेकिन यदि हमारा मन स्वस्थ नहीं है, जैसे आज की दुनिया में भी कहते हैं ना, बीमारियों का कारण क्या है? बीमारियों का कारण है आज टेंशन में रहना, गलत जीवन शैली। 70% बीमारियां आज लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, टेंशन के कारण होते। सुनते हैं ना, जब हम दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं तो हम भी ये सुनाते हैं उनको कि 70% बीमारियां किससे होती हैं? टेंशन से होती हैं। यानी टेंशन हमारे मन को असर करता है और टेंशन का कारण नेगेटिव थिंकिंग है। किन्हीं भी परिस्थितियों में, समस्याओं में यदि हम नेगेटिव सोचते हैं तो टेंशन होता है और उसके कारण हमारे शरीर में कुछ केमिकल्स बनते हैं, क्योंकि वो हमारी भावनाओं को प्रभावित करते हैं और उसके कारण शरीर पर असर आने लगता है, शरीर में बीमारियां होती हैं। और तनाव के कारण आज जो बीमारियां होती हैं उसमें हार्ट की बीमारी है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ऑटोइम्यून डिजीजेस, एसिड, हाइपर एसिडिटी, एसिड बनना, ये सब कॉमन बीमारियां हैं जो तनाव से होती हैं। लेकिन हम बाबा के बच्चे जो दुनिया वाले जिस तरह से तनाव अनुभव करते हैं, हम उस तनाव को ज्ञान से समाप्त कर सकते हैं। कर सकते ही नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही हम ज्ञान सुनते हैं हमारी वृत्ति बदल जाती है, हमारे सोचने का तरीका उस परिस्थिति के प्रति बदल जाता है। कहते हैं तनाव दूर करना है तो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दो। नेगेटिव सोचने की बजाय पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव सोचना क्या है? पॉजिटिव सोचना क्या है? शुभ सोचना है। सकारात्मक चिंतन करना माना ज्ञान का चिंतन करना है। मानो किसी के घर में बहुत अपना कोई प्रिय है, परिवार का जवान बेटा है, उसी की मृत्यु हो जाती है या पति की मृत्यु हो जाती है, तो दुनिया वालों के लिए तो बहुत टेंशन की बात है या नहीं? परिस्थिति है ना टेंशन की। लेकिन इस परिस्थिति में भी बाबा ने हमें तो समझ दी है कि उस आत्मा का जितना हमारे साथ हिसाब किताब है, जितना उसका पार्ट है उतना ही वो रहेगी, बाकी तो फिर जहां उसका हिसाब किताब है वहां जाएगी। उसमें भी मुझे उस आत्मा को अब सहयोग देना है, जो उसकी भविष्य यात्रा है उसके लिए मुझे शुभ भावनाओं का दान देना है, शांति का दान देना है। तो इसीलिए किसी की मृत्यु पर हम बहुत दुखी नहीं होते, बहुत टेंशन में नहीं आ जाते। दुनिया में मुझे पता है कई भाई बहने हमसे ऐसे मिलते हैं कि जिनके घर में ऐसी कोई मृत्यु हुई है तो एक साल हो गया, कहते हैं कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन उनकी याद में हम रोते नहीं हैं या दुखी नहीं होते हैं। और अब डॉक्टर ने डिप्रेशन की दवाइयां शुरू कर दी हैं, क्योंकि मन उस उदासी से, दुख से बाहर ही नहीं आ पा रहा है। तो देखने में परिस्थिति कैसी है, लेकिन हम उसको बदल सकते हैं। स्वस्थिति से परिस्थिति को बदल देना, ये ब्राह्मण आत्माओं की शक्ति है। तो उसका प्रभाव जो मेरे शरीर पर आना चाहिए, शरीर पर प्रभाव क्या आ गया? डिप्रेशन में चले गए। आज डिप्रेशन संसार की सबसे बड़ी बीमारी बनती जा रही। कहते हैं अकेले भारत में ही करोड़ों लोग डिप्रेशन की दवाइयां खाते हैं। तो क्यों खाते हैं डिप्रेशन की दवाइयां? क्योंकि जिस परिस्थिति में नेगेटिव सोच चल गई, क्यों क्या कैसे में चले गए, मन उलझन में उलझता चला जाता है, उससे बाहर निकल ही नहीं पाता, क्योंकि सत्य ज्ञान नहीं है, समझ ही नहीं है। और हमें तीनों कालों का ज्ञान है, मानो बच्चे हैं घर में, बच्चों की परिस्थितियों का, बच्चों की पढ़ाई का, बच्चों के बीमारी का, या बच्चों की शादी का, कितनी प्रकार की चिंताएं आज घर गृहस्थ में रहने वालों को होती हैं, कदम कदम पर चिंता होती है। और हम क्या सोचते हैं, बाबा ने हमें क्या समझाया है, बच्चे किसके हैं, मेरे हैं या बाबा के हैं? बाबा के हैं। अगर सचमुच हमने ये स्वीकार किया है और हम ट्रस्टी हैं, हम सेवाधारी बनकर सेवा करते हैं, तो मेरे सारे बोझ, मेरी सारी चिंताएं बाबा की हैं, बच्चे बाबा के हैं, ड्रामा में उनका अपना भाग्य है, उनका अपना पार्ट है। अगर वो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं तो भी बहुत अच्छा, नहीं पढ़ रहे हैं तो भी हम जितना सहयोग दे सकते हैं दे। किसी भी आत्मा के पार्ट में हमें क्या करना है, शुभ भावना रखनी है और सहयोग देना है, उससे आगे हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो साक्षी होकर के हर आत्मा के पार्ट को देखने की शक्ति हमें ज्ञान से आ जाती है। तो उनकी परिस्थितियों की जो चिंता हमें होती है, उससे भी हम न्यारे हो सकते हैं। तो हम बाबा के बच्चे हर परिस्थिति में बेगमपुर के बादशाह, बेफिकर बादशाह रह सकते हैं, नहीं रह सकते? हाँ, क्या कहेंगे? हर हाल में खुशहाल। हाँ, कह रहे हैं फरिश्तों जैसी चाल, बाबा हमें कहता है अगर कोई आपसे पूछे कि आपके हालचाल क्या हैं, तो क्या जवाब दो? खुशहाल हैं, हाल खुशहाल हैं, और चाल हमारी फरिश्तों वाली चाल है। तो जब मन सब फिक्र से निश्चिंत रहता है और बाबा मेरे साथ है, तो फिर कर्म भोग की परिस्थिति को पार करना या शरीर की कोई भी बीमारी जब आती है, तो उस बीमारी से मुक्त होना हमारे लिए मुश्किल नहीं होता है। बहुत जल्दी हमारे वो हिसाब किताब चुक्त हो जाते हैं, जिसके लिए कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं और चिंता जैसा मर्च नहीं। तो वो खुशी की खुराक, संगम युग है ही मौजों की जीवन, तो बाबा हर पल हमें वो खुराक खिलाते रहते हैं, चाहे हम बाबा की को याद करते हैं, बाबा की याद भी हमें खुशी का अनुभव कराती है, बाबा की याद से हमें अतींद्रिय सुख मिलता है, और बाबा की याद से और उसमें जो हम ज्ञान का सिमरण करते हैं, जिसको हम कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, तो वो भी हमें खुशी देने वाला है। ज्ञान का स्मरण, जो बाबा ने हमें स्वमान दिए, मैं कौन हूँ, ये सत्य परिचय जो हमें मिला, हम कोई साधारण आत्माएं नहीं हैं, लेकिन विशेष आत्मा है, देवात्मा है, पूज्य आत्मा है, भगवान के चुने हुए इस संसार से कोटों में कोई, कोई में भी कोई, पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं हैं। अगर इस स्मृति में रहते हैं, माना ऐसे नहीं एक तो जान लिया, हाँ जानते हैं बाबा ने क्या कहा, आत्मा हूँ रोज सुनते हैं, रोज बाबा मुरली में सुनाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो एक कान से सुना दूसरे कान से बाहर। बाबा कहते हैं एक एक ज्ञान रत्न अनमोल है, एक एक ज्ञान रत्न की वैल्यू लाखों के बराबर है, ऐसे बाबा हमें कहते। लेकिन हम उसकी वैल्यू को समझे तब, जैसे वो एक कहानी आती है कि एक भिखारी राजा के पास भीख मांगने आता था, तो राजा उसको रोज देखता था, तो एक दिन राजा ने सोचा ये रोज रोज भीख मांगता है, इसको क्यों ना भीख मांगने से छुड़ा दिया जाए। तो उसने अपने गले में जो बहुमूल्य रत्नों की माला पड़ी हुई थी, वो माला निकाल करके उस भिखारी को दे दी। तो भिखारी को तो वो रत्नों का ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, तो उसने जब उसको लिया, उस समय उसको बहुत भूख लगी हुई थी, तो उसने सोचा राजा मुझे कुछ खाने को देता तो ज्यादा अच्छा था, ये क्या पत्थर पकड़ा दिए उसने मुझे, अब इसका मैं क्या करूंगा, तो मेरे किसी काम का नहीं है। तो गुस्से में आकर के उसने वो माला तोड़ी और फिर एक एक पत्थर को पक्षी उड़ाने में फेंकने लगा, जो पक्षी पेड़ पर बैठे हुए थे। तो जब आखिरी पत्थर उसके हाथ में था तो किसी की नजर पड़ गई कि ये तो रतन है, ये फेंक रहा है, देख लिया उसने एक एक रतन को वो फेंक रहा है। तो उसने उसको रोका, उसने कहा कि क्यों फेंक रहे हो? तो उसने कहा क्यों, तुमको क्या मतलब है? उसने कहा ये जो तुम फेंक रहे हो ये कोई पत्थर नहीं है, ये तो लाखों का रतन है। तो उनकी वैल्यू पता ना होने के कारण उसने व्यर्थ में ही वो रतन फेंक दिए। तो ऐसे ही कई बार हम ज्ञान के महत्व को जब इतना नहीं समझते हैं तो साधारण रीति से ही अपने जीवन में चलते रहते हैं, यानी उस धन से जो हमें संपन्नता अनुभव होनी चाहिए अपने जीवन में, और जितना हम भरपूर होते हैं उतना खुश होते हैं, जितना जो सर्व प्राप्ति संपन्न होता है उतना वो खुश रहता है, क्योंकि प्राप्तियों की खुशी होती है। दुनिया वाले अपनी खुशी किसमें ढूंढते हैं? वो भी अल्पकाल की प्राप्तियों में खुशी ढूंढते हैं, लेकिन उसके लिए खर्चा करते हैं। मनपसंद स्थान पर घूमने जाएंगे, किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाएंगे, किसी क्लब में जाएंगे, पार्टी में जाएंगे, खुशी कैसे तलाशते हैं? अल्पकाल के तरीके अपनाते हैं, और जब तक वो मनोरंजन करते हैं, जब तक मन पसंद स्थान पर व्यक्ति के साथ या जिस वस्तु की इच्छा करते हैं वो इच्छा उनकी पूरी हो जाती है, या मन पसंद कोई सफलता चाहते हैं वो सफलता मिल जाती है, कहीं कुछ नाम चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं वो मिल जाता है, तो खुश, उतना समय खुश, और बाद में फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो यदि ब्राह्मण जीवन में भी हमारी खुशी का आधार ये अल्पकाल की प्राप्तियां हैं, अभी भी ऐसे नहीं कि हम इनसे खुश नहीं होते, हम भी अल्पकाल की प्राप्तियों में खुश होते हैं, लेकिन सदा खुश रहना, एवर हैप्पी रहने का आधार क्या होना चाहिए? क्योंकि अगर ये आधार हिले तो खुशी भी हिली। तो हमारी खुशी का आधार बाबा है, बाबा में ही सब संसार वैभव समाया हुआ है, बाबा ही संसार है, और इसीलिए हम कहते हैं पाना था वो पा लिया, बाकी क्या बाकी रहा। तो भगवान को पाने के बाद उसको याद करने से, उससे जो हमें प्राप्तियां हो रही हैं वो स्थूल सूक्ष्म सब प्राप्तियां हैं, जो बताया सभी भाग्य बाबा ने हमें प्राप्त कराए हैं, और सूक्ष्म भी ज्ञान का खजाना मिला है, शक्तियों का खजाना मिला है, गुणों का खजाना मिला है, ये संगम युग का समय कितना अनमोल है वो भी हमारे लिए खजाना है। बाबा कहता है संकल्प का खजाना, जो बाबा ने हमें ज्ञान के आधार पर श्रेष्ठ संकल्प करने की शक्ति दी है। तो ये सब खजाने जितना हम यूज करते हैं, जितना हम बढ़ाते जाते हैं, उतना हमारी खुशी बढ़ती जाती है। नहीं तो कई बार क्या होता है, हम जब दूसरों को देखने लगते हैं खुशी गुम होती है, कई बार हमें जो बाबा ने दिया है वो नहीं, लेकिन हम दूसरों को देखने लगते हैं तो तुलना करते हैं तो दिल शिकस्त हो जाते हैं। दूसरों के भाग्य को देखते हैं, उनके पार्ट को देखते हैं, उनकी विशेषता को देखते हैं, तो लगता है क्या ड्रामा में बाबा ने मेरा पार्ट ऐसा बनाया है। हाँ, कोई माता है तो समझती है काश मैं कुमारी होती, हाँ तो मैं समर्पित टीचर हो जाती, अच्छी सेवा करती, या जो भी, मतलब एग्जाम्पल है। तो हम अपने पार्ट को न देख करके किसको देख रहे हैं, दूसरों के पार्ट को जब हम देखने लगते हैं तो फिर दिल शिकस्त हो जाते हैं, माना थोड़ा सा निराश होते हैं और बाबा को भी हम उलाहना देते हैं कि ड्रामा में मेरा पार्ट ऐसा क्यों बनाया है। तो खुशी गुम या फिर ईर्ष्या में आ जाते हैं, दो स्थितियां होती हैं, या तो हम दिल शिकस्त होते हैं और नहीं तो ईर्ष्या करने लगते हैं दूसरों से। तो बाबा कहता है दोनों में ही हमें जाने की जरूरत नहीं है। आपको जो बाबा ने दिया, भगवान ने सबको एक जैसा दिया है, कोई अंतर नहीं रखा कि कोई समर्पित है या कोई घर ग्रस्त में रहता है, सबको सर्व शक्तियां सर्व गुण एक ही द्वारा एक ही जैसा एक ही समय, ये भी अंतर नहीं है कि कोई 80 साल पहले आ गए यज्ञ में और कोई आज ज्ञान में आए हैं तो बाबा उसको नहीं देता है। इतना अखुट और बेहद का खजाना है बाबा का, कोई जितना चाहे ले ले, कोई कमी नहीं है। है अंतर, भगवान ने कभी अंतर रखा कि घर ग्रस्त में आने वाले राजा नहीं बन सकते हैं, जो समर्पित हुए हैं वही राजा बन सकते हैं? कभी सुनाया ऐसे मुरली में बाबा ने? लेकिन यूज करने वाले, जैसे कहते हैं जिसकी जितनी गागर होती है वो उतना ही सागर से पानी भरता है, तो हम जो बाबा के खजानों को यूज करने वाले हैं हम अंतर कर लेते हैं। तो यदि मैंने अपनी विशेषता को पहचाना, बाबा ने कहा हर ब्राह्मण आत्मा में कोई ना कोई विशेषता है, चाहे वो 16,000 की माला वाले हैं, चाहे वो 9,00,000 हैं, सतयुग की जो प्रजा है 9,00,000, जितने भी सितारे ब्राह्मण संसार के गाए हुए हैं, हरेक में कोई ना कोई विशेषता है। तो मुझे अपनी विशेषता को कार्य में लगाना है, और जब हम विशेषता को कार्य में लगाते हैं तो एक मुरली में बाबा ने कहा था अगर आपने अपनी एक विशेषता कार्य में लगाई तो उसके आगे एक जीरो लग जाएगी, वो 10 हो जाएगी, और फिर और कार्य में लगाएंगे तो 10 के आगे एक जीरो और लग जाएगी वो 100, और आगे एक जीरो लगाएंगे तो 1,000, और ऐसे बढ़ते बढ़ते संपन्न बन जाएंगे, कोई कमी नहीं रहेगी। तो मुझे अपनी विशेषता को पहचानना है और उसे यूज करना है, तब मेरा जमा का खाता बढ़ता है, और जितना हमारा जमा का खाता बढ़ता है उतना ही खुशी होती है। दुनिया में भी देखो, अगर किसी के पास बहुत धन होता है, भले कई बार होता है कि उनको यूज नहीं करना आता है, धन को जमा करके ही खुशी होती है कि मेरे पास इतना धन है, लेकिन बाबा यहाँ कहता है सिर्फ जमा नहीं करना है, जमा करके देख करके खुश नहीं होना है, लेकिन अपने उन खजानों को यूज करते रहो तो वो भाग्य बढ़ता जाएगा। तो खुशी को बढ़ाना ये हमारे हाथ में है, बाबा खुशियों का सागर है और उसने हमें खुशियों का स्वरूप बनाया है। तन की बात हम कर रहे थे और उसमें खुशी के आधार पर हम तन का स्वास्थ्य अनुभव करते हैं, लेकिन जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो एक्सरसाइज, हर दिन कुछ समय अपने तन के लिए हमें व्यायाम करने की जरूरत है। तो रोज हम आधा घंटा व्यायाम करें या 40 मिनट हम वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करना, तेज गति से चलना जिसे कहा जाता है, वो हम करें। आज के तमो प्रधान प्रकृति के अनुसार हमारे तन को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है, और ये भी बाबा ने इतना सहज कर दिया, आज इतने लोग एक्सरसाइज सिखाने वाले हैं, साधन है जिनके द्वारा हम ये शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, टेलीविजन में इतने प्रोग्राम आते हैं जो किस अंग के लिए कौन सा व्यायाम जरूरी है, गर्दन की तकलीफ है तो क्या व्यायाम करना चाहिए, अगर टांगों में दर्द है तो क्या व्यायाम करना चाहिए, कमर में दर्द है तो, सब सब कुछ हम सहज सीख सकते हैं और उसे हम कर भी सकते हैं, तो वो भी हमारे तन को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। दूसरा, भोजन, तो बाबा ने पहले ही हमें सात्विक भोजन खाने का नियम दिया है, लेकिन हमारा भोजन सिर्फ सात्विक नहीं है, सात्विक के साथ साथ ब्रह्मा भोजन भी है। हम परमात्मा की याद में बाबा को भोग लगाकर जब उसे खाते हैं, तो वो ब्रह्मा भोजन में तन की बीमारियों को दूर करने की शक्ति भर जाती है। आजकल ये भी प्रयोग करते हैं, सिखाते हैं ना सबको, पानी भी पीना है तो यदि हम प्योर वाइब्रेशंस देकर के उस पानी को पिएंगे तो वो भी हमारे लिए दवाई का काम करेगा। भोजन हम बाबा की याद में खा रहे हैं, यानी प्रकृति पर हमारे वाइब्रेशंस का प्रभाव होता है। और आजकल की जो प्रकृति है, क्योंकि वो जिन वाइब्रेशन से गुजर कर आ रही है, जो उसे उगा रहा है, जो उसे बाजार में ला रहा है, बेच रहा है, उन सबके वाइब्रेशंस कैसे हैं? अशुद्ध वाइब्रेशंस हैं, क्योंकि हरेक के अंदर कोई ना कोई विकारों का प्रभाव है, स्वार्थ है, लोभ है, जो भी हम कहें, भ्रष्टाचार है आज, तो कहीं ना कहीं वो दूषित हो जाता है, चाहे वो अन्न है, चाहे वो सब्जियां हैं। तो जब हम उन्हें खाएं तो हमें ये बहुत अटेंशन देना है, ऐसे नहीं अलबेलेपन में जैसे आया वैसे हमने उसको पका लिया, जैसे आया वैसे उसको खा लिया, बाबा को याद ही नहीं किया, भूल गए। जैसे कई बार बाबा मुरली में कहते हैं ना, कोशिश तो करता हूँ कि बाबा की याद में भोजन करूं, लेकिन फिर भी भूल जाता हूँ। तो हम भी फिर इसी अलबेलेपन में ऐसे ही करते हैं, और खासकर जब खाने की टेबल पर चार लोग साथ बैठते हैं तो आपस में बातें करने लगते हैं, बाबा को पूरी तरह से भूल जाते हैं। तो फिर वो जो दूषित वाइब्रेशन वाला खाना है, जो मेरे तन को बीमार कर सकता है, पहले मन को बीमार करेगा और फिर तन को, मन पर असर आता है। इसीलिए पवित्रता के नियम के लिए भोजन की शुद्धि बाबा ने विशेष रूप से कही कि जैसा अन्न वैसा मन। तो ये हमें बहुत अंडरलाइन करना है कि बाबा की याद में वाइब्रेशन दिया हुआ भोजन ही हम खाएं, तो फिर काफी बीमारियों से हम स्वतः ही बचे रहेंगे। फिर डाइट में भी कहते हैं लो कोलेस्ट्रॉल हाई फाइबर डाइट हमारा होना चाहिए। लो कोलेस्ट्रॉल माना कम फैट वाला खाना खाएं। आज की जो जीवन शैली है वो आरामदायक जीवन शैली है, क्योंकि हर काम के लिए मशीनें हैं हमारे पास, मेहनत करनी नहीं पड़ती है हमको, तो हमें बहुत फैट पचता नहीं है। आज के जमाने में जब इंसान ज्यादा शारीरिक श्रम नहीं करता है तो वो फिर पाचन नहीं हो पाता है, इसीलिए हमें फैट ज्यादा नहीं खाना है। माना तली हुई चीजें, जो हम कहते हैं हम समोसा खाते हैं या पूड़ी खाते हैं, पकोड़े खाते हैं, कचौड़ी खाते हैं, ये सब हाई कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें मानी जाती हैं। तो ये हमें सब कम से कम, चलो कभी आप खाते हैं महीने में एक बार कोई अवसर पर खाते हैं वो अलग बात है, वो भी हम कैलोरी समझ करके खाएं, कि इसमें अगर बहुत ज्यादा कैलोरी है तो फिर जो हमारा दूसरा भोजन है उसको हम हल्का कर दें। अगर एक टाइम हमने भारी खाना खाया है तो दूसरे टाइम की कैलोरी हमने लिमिट कर दी। और हाई फाइबर होता है साबुत अनाज में, सब्जियों में, फलों में, दालों में, तो वो हाई फाइबर डाइट जो हम रेगुलर खाते हैं वो शामिल होना चाहिए। उसमें मैदा जो है वो रिफाइंड होता है, तो मैदे की चीजें कम से कम खानी चाहिए, उसमें लो फाइबर होता है। ऐसे ही नमक कम खाना है, मीठा कम से कम खाना है, क्योंकि ये भी शरीर में बीमारियां पैदा करते हैं। तो ये छोटी छोटी जो लाइफस्टाइल की बातें हैं, यदि हम ध्यान रखते हैं, बाबा कहता है प्रकृति की समझ होना ये भी ज्ञान है। संपूर्ण ज्ञान में ये भी ज्ञान आ जाता है कि मेरे शरीर की प्रकृति को मुझे वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार कैसे चलाना है, कैसे अपने आप को स्वस्थ रखना है। और अगर हम स्वस्थ हैं तभी हम पुरुषार्थ की गति को बढ़ा सकते हैं। हाँ, यदि शरीर में दर्द होता है तो योग लगता है या दर्द खींच लेता है बुद्धि को, सोचते हैं जाएं परमधाम, लेकिन कमर में इतना दर्द हो रहा है, घुटने में इतना दर्द हो रहा है, परम धाम में बुद्धि टिकती है, क्या कहेंगे। तो इसका मतलब शरीर को स्वस्थ रखना ये हमारी जिम्मेवारी है, और जो नॉलेज हमें है उस अनुसार यदि हम हिम्मत रखते हैं तो फिर बाबा की मदद भी हमें मिलती है। और ऐसे बहुत भाई बहनों का अनुभव है, बाबा की याद में बैठे पावरफुल योग, कोई तकलीफ थी, बिल्कुल वो तकलीफ अनुभव ही नहीं होती है। हमारा खुद का अनुभव है, हम क्योंकि योग के प्रयोग की बात आती है, कई बार बाबा हमें कहते हैं, ऐसे बहुत सारे भाई बहने ज्ञानामृत में भी अपना अनुभव लिखते हैं कि कैसे योग का प्रयोग करके उन्होंने अपनी बीमारी से अपने आप को स्वस्थ कर लिया। इसका मतलब ये नहीं कि दवाई नहीं खानी है, दवाई खाते हुए यदि हम योग की शक्ति का प्रयोग करते हैं तो ऐसे ही हम एक बार मतलब ड्रामा में जो भी हमारे हिसाब किताब होते हैं हमारे सामने कई बार आते हैं, तो कुछ वर्ष पहले एक बड़ा एक्सीडेंट मेरा हुआ, हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ और इतना सीवियर एक्सीडेंट था कि कोई उम्मीद नहीं थी। हेड इंजरी हुई, जो सिर था वो फट गया, काफी खून वून निकला, बेहोश भी हो गए, पता भी नहीं कि एक्सीडेंट हुआ ना, ये स्थिति थी। तो आबू रोड के नजदीक ही हुआ था, तो यहाँ ट्रॉमा सेंटर में अपना ही हॉस्पिटल है, यहाँ लाया, एम्बुलेंस से लाया गया और फिर यहाँ पर सब ट्रीटमेंट शुरू किया, लेकिन मुझे उस समय कोई होश नहीं था। जब सब कुछ हो गया, टांके वगैरह लग गए और तब उसके बाद एक दो घंटे में मुझे होश आया, तब मुझे पता चला कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। मतलब बाबा की मदद कैसे होती है कि मुझे वो एक्सीडेंट होने वाले दर्द को भी महसूस नहीं कराया, एक्सीडेंट हुआ वो भी मुझे पता नहीं, बिल्कुल बेहोशी की स्थिति में वो सारा ट्रीटमेंट हुआ तो दर्द की कोई फीलिंग नहीं, और जब मैं होश में आई तब तक सब दवाइयां दी जा चुकी थी तो भी दर्द की फीलिंग खत्म। फिर 3 दिन तक जब तक आईसीयू में थे तो मैंने अनुभव किया उस समय, उसके पहले कभी भी सोल कॉन्शियस की पावरफुल स्टेज क्या होती है, आत्मभिमानी स्थिति ना। बाबा कई बार कहते हैं अपनी बीमारी का वर्णन नहीं करना है, कई बार लोग अपनी छोटी छोटी बीमारी का बहुत वर्णन करते हैं, थोड़ी भी बीमारी हो जाती है तो 10 लोगों के सामने जब मिलेंगे तब क्या करेंगे, वही बात करेंगे, तो अपना दर्द दूसरों तक भी फैलाते हैं, माना वो दर्द की फीलिंग दूसरे भी करने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं हम हेल्थ कॉन्शियस हो गए, यानी बीमारी कॉन्शियस हो गए, और यदि हम बीमारी कॉन्शियस हो जाएंगे तो सोल कॉन्शियसनेस में नहीं है, तो बाबा के साथ जो हमारा कनेक्शन है वो टूटा, यानी बाबा की दुआएं मिलना, वो शक्ति मिलना बंद, और बीमारी को, छोटी बीमारी को भी हम बड़ा फील करते हैं, ऐसा हो जाता है। लेकिन यदि हम सोल कॉन्शियस रहते हैं तो बीमारी का अनुभव ही नहीं है तो हम वर्णन क्या करेंगे। तो मैंने उस समय ये अनुभव किया कि जो भी मेरे से मिले उस दौरान मुझे जरा भी फीलिंग नहीं थी कि मुझे कोई तकलीफ है, माना देखने वालों को ऐसे लगता था कि ये सूली जैसी स्थिति है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और मुझे ऐसे लगता था जैसे बाबा की अंदर से मुझे टचिंग थी कि सब ठीक हो जाएगा और मुझे कोई दर्द नहीं है, और मैं अंदर से इतना खुश जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और ऐसा ही हुआ कि 3 दिन के अंदर बहुत सहज आईसीयू से बाहर आ गए और 10 दिन के अंदर अंदर तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए। भले ही वो शरीर का जो हीलिंग है वो अपना पीरियड होता है, उसको तो टाइम लगता है, जितना समय में टांके निकलने चाहिए या जितना समय में बॉडी सिस्टम हील होता है, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि मन को स्वस्थ रखा तो बहुत कम समय में इतनी बड़ी दुर्घटना से मैं अपने आप को सामान्य अनुभव कर पाई। और फिर से वो सामान्य जी, बाबा की जो सेवाएं हम करते हैं, हाँ उस सेवाओं में हम बिल्कुल एक्टिव हो गए। तो हम में से बहुत करते हैं अनुभव, और भी हम इस अपने अनुभव को बढ़ा सकते हैं। जैसे आप सुनते हैं हमारे डॉक्टर सतीश गुप्ता जी हैं, वो कैसे हृदय रोगियों के जो ब्लॉकेजेस हैं लाइफस्टाइल चेंज के द्वारा, योग के प्रयोग के द्वारा, दवाई के द्वारा, अभी तक हजारों मरीजों, आपने उनका कल क्लास किया, तो हजारों मरीजों का वो ठीक कर चुके हैं। तो हम चाहें तो इस संगम युग पर तन की नॉलेज के द्वारा और योग के प्रयोग के द्वारा अभी भी संपूर्ण स्वास्थ्य का हम अनुभव कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो खुशी के एवर हैप्पी की बात है, एवर हैप्पी रहने के लिए भी बाबा ने हमें याद और ज्ञान का खजाना सेवा, सेवा भी हमें खुशी देती है, सेवा दी है। जितना हम सेवा में लगे रहते हैं उतना हमारी खुशी और शक्ति बढ़ती जाती है। और जो धन है, एवर वेल्दी की बात हम करते हैं, तो बाबा कहता है ज्ञान धन स्थूल धन को लाने वाला होता है। इसलिए कहते हैं नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। तो जितना हम अपना ये पढ़ाई पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, उतना हम भविष्य में भी साहूकार बनते हैं, और वर्तमान में भी हमारी सब आवश्यकताएं सहज पूरी होती हैं। और ये सभी ब्राह्मणों का अनुभव है। और बाबा कहता है आराम से खाने रहने के लिए आपको जितना चाहिए वो सहज मिलेगा, लेकिन एक होती है आवश्यकता और एक होती है इच्छा। तो अगर हम इच्छाओं में चले जाते हैं, मतलब थोड़ा बहुत लोभ में आ जाते हैं कि मेरे पास ये भी होना चाहिए, मेरे पास ये भी होना चाहिए, बाबा कहता है ब्राह्मण जीवन में आप करोड़पति और लखपति आपको बाबा नहीं बनाएगा, क्योंकि अगर करोड़पति बनाएगा तो क्या होने वाला है, माया की दुनिया में सहज चले जाएंगे। और इसीलिए दुनिया में कहते हैं झूठी माया झूठी काया। तो बाबा कहता है तो अगर अभी करोड़ कमाने जाएंगे तो सदा काल के करोड़ से वंचित हो जाएंगे। तो कौन सी कमाई हमें करनी है, अविनाशी कमाई करनी है, सदा काल की कमाई करनी है। वो अविनाशी कमाई का महत्व, दुनिया में आज भाग दौड़ की जिंदगी है, लोग भाग रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं, धन कमाने के पीछे। लेकिन क्या हुआ, अभी सरकार ने नोटबंदी कर दी, हाँ देखिए, तो कहते ना किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए सफली हो उसकी, हाँ और भी है इसमें, किसकी आग जलाए किसकी चोर लूट जाए, हाँ और सफल हो उसकी जो खर्चे धनी के नाम। तो हमें तो बाबा ने पहले से ही जागृत कर दिया है कि विनाशी धन के पीछे हमें नहीं जाना है, अपना समय हमें ज्यादा बर्बाद नहीं करना है। बाबा तो कई मूल्यों में कहते हैं यदि आपके पास इतना धन है कि आप आराम से खा सकते हैं रह सकते हैं, तो फिर पूरा समय कहाँ लगा दो, बाबा की सेवा में लगा दो। तो इसका मतलब हमेशा के लिए तो हम एवर वेल्दी बनने वाले हैं ही, 21 जन्मों के लिए ही नहीं, आगे के लिए भी बाबा कहता है 3/4 कल केवल कलयुग के लास्ट समय में ही थोड़ा ऐसा होता है जो धन की खींचातान होती है, नहीं तो सदा ही हम आत्माएं संपन्न रही हैं। और अभी भी हर कदम में पद्मों की कमाई होती है। अगर हर कदम बाबा की श्रीमत प्रमाण उठाया तो एक एक कदम में क्या कमा रहे हैं, हम पदम कमा रहे हैं। दुनिया में कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो वो इतनी कमाई नहीं कर सकता है। चलो एक दिन में लाखों कमा लेगा, लेकिन एक दिन में एक कदम उठा करके पदम कमा सकता है। तो बाबा कहता है अगर किसी को पूछना हो कि सबसे ज्यादा साहूकार कहाँ बैठे हैं, तो हम कहेंगे यहाँ बैठे हैं। पहले शुरू शुरू में बाबा कहता था ओम मंडली इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, तो कहेंगे कि कहाँ आप कह रहे हो साहूकार, दिखने वाले तो कैसे हैं, बहुत साधारण सी आत्माएं बैठी हैं, लेकिन राज इतना बड़ा है कि ये हर आत्माएं श्रीमत प्रमाण बाबा के चलने से हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले, इतना खुशी और नशा हमें होना चाहिए। तो अभी भी हम एवर वेल्दी हैं और सदा काल के लिए भी हम धनवान पद्मा पदम पति बाबा के बच्चे बन रहे हैं। तो जितना ही बाबा के ज्ञान को, बाबा की शक्तियों को, बाबा के गुणों को हम अपने जीवन में यूज करते जाते हैं, उतना ही हम एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी वर्तमान में भी अनुभव करते हैं और भविष्य में तो सदा हैं ही। ओम शांति।
प्रभु आपके यूं